ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ज्ञानतिमिरान्धश्रज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांशम् श्रीरूपां सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतां सावधूतां परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांशं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद का जो लेक्चर था बहुत ही शक्तिशाली था और बहुत शिक्षाप्रद था। श्रील प्रभुपाद ने अपने लेक्चर में एक चीज कही थी भक्तों के बारे में। क्या कहा था? वैष्णव के बारे में कहा था। तो आज श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का आविर्भाव है। तो जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के भक्त हैं, विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद के जो अनुयायी हैं, हमें प्रभुपादानुग कहा जाता है, और जो भी चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर्स हैं उनको रूपानुग कहा जाता है, रूप गोस्वामी के अनुगत। और हम सब उसी रूप गोस्वामी के जो प्रिय भक्त हैं, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, भक्ति वेदांत स्वामी, उनके अनुगत हैं। तो प्रभुपाद आज के लेक्चर में कह रहे थे कि कृष्णा गरीब नहीं है, कृष्णा इज नॉट पुअर और हिज डिवोटीज इज आल्सो नॉट पुअर। तो कृष्णा गरीब नहीं है, उनके भक्त भी गरीब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भक्त किसको सेल करते हैं? कृष्ण को सेल करते हैं, सेलर ऑफ कृष्णा। कृष्ण को सेल करने वाले कृष्णा के डिवोटीज हैं। तो वास्तव में आध्यात्मिक जीवन का ये सार है। महान महान वैष्णव आचार्यों के जीवन से हम देखते हैं कि कृष्ण प्राप्ति या कृष्ण दर्शन की जो बात श्रील प्रभुपाद ने आज की थी, वो लालसा, प्रभुपाद ने कहा था लालसा कैसे आएगी हमारे अंदर? एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो ये जो लालसा आप किसी जगह से खरीद नहीं सकते, आपके पास भौतिक धन आदि से भगवान के प्रति लालसा, उत्कट लालसा आप ला नहीं सकते। उसके लिए केवल एक ही उपाय है, और वो उपाय है भक्तों का संग। इसलिए हमारे परंपरा के एक महान आचार्य हैं जिन्होंने ग्रंथ लिखा प्रेम विवर्त, जगदानंद पंडित, उन्होंने कहा साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाहे, संसार चिन्हित यार कौन वस्तु नाए। कि मुझे तो दो ही चीजें चाहिए संसार को जीतने के लिए, संसार से पार होने के लिए, वो है साधु संग कृष्ण नाम। साधु संगीत कृष्ण नाम यही मात्र चाय, चाय नहीं चाहिए है कि नहीं? लोग उठते वो चाय चाहिए, वो टी चाहिए, चाय के बिना उनका जीवन अधूरा है। देखिए ये कह रहे बंगला में चाय चाहिए, मुझे चाहिए दो चीजें, हाँ कृष्ण नाम अकेले भी नहीं चाहिए, साधु संगे कृष्ण नाम, साधुओं के संग। कोई कहता है मुझे तो हरे कृष्ण मंत्र पता चल गया, 16 महा जप करनी है, मैं अकेला कर सकता हूँ। अकेला माया आपकी गर्दन मोड़ के रख सकती है, आपसे एक माला भी जप नहीं होगा। वैसे जो मांसाहारी है मुर्गी की गर्दन मोड़ते हैं, माया बिल्कुल वैसे। इसलिए कृष्णदास कविराज ने कहा झापटिया घरे कृष्ण भूली गेला जीव भोग वांछा करे। कृष्ण को जब जीव भूल गया, क्यों भूल गया कृष्ण को? क्योंकि उसके अंदर भोग करने की प्रगाढ़ भावना आ गई, भोग वांछा करे निकटस्थ माया। ऐसे नहीं कि माया को कृष्ण फोन करेंगे कि ये देखो जरा इस व्यक्ति को पकड़ो, ऐसे नहीं। माया सदैव हमारे निकट है, निकटस्थ माया झापटिया धरे। कैसे पकड़ती है माया? जैसे बिल्ली है, चील है, चील है या बिल्ली भी इसको चूहे को पकड़ती है, ऐसे नहीं बोल आराम से नहीं चंप लगा दी झपट कर पकड़ती है। चील का उदाहरण दिया आपको मुझे, चील भी इनको पकड़ते हैं, अलग अलग उनके जो खाद्य पदार्थ होते हैं। तो उसी प्रकार से ये सिंह हिरण को पकड़ता है, तो उसी प्रकार से ये जो माया देवी है वो हमें पकड़ती। माया क्या है? वो चीज हमारे लिए माया है जो हमें कृष्ण को भुला देती है, या जिस चीज से हम कृष्ण से दूर जा रहे हैं, जिस चीज से हम कृष्ण को भूल गए हैं, वो चीज हमारे लिए माया है। चाहे वो अपना मोबाइल क्यों ना हो, अपना कंप्यूटर क्यों ना हो, अपनी पत्नी बच्चे गाड़ी घर धन, अपना सुंदर शरीर, अपना बल ऐश्वर्य, इनके कारण यदि आप कृष्ण को भूलते हैं तो वो चीज हमारे कितने ही निकट क्यों ना हो, कितनी ही प्रिय क्यों ना हो, वो हमारे लिए क्या है? माया का कार्य करती है। तो वास्तव में सारे अध्यात्म का सार है Always remember Krishna, never forget Krishna। हमेशा कृष्ण का स्मरण हो जाए और कृष्ण को हम कभी नहीं भूल पाए। ये इतना इजी नहीं है, बल्कि कितना सरल है, कठिन भी है और सरल भी है। लेकिन कठिन किसके लिए है? प्रभुपाद कहते थे जो कृकण है, कपट है, कपट भावना से भगवत कार्य में लगा है, उस व्यक्ति के लिए सिंपल चीज भी कठिन हो जाती है। लेकिन जिस व्यक्ति ने चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लिया है और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कठिन चीज भी सरल हो जाती है। तो इसलिए ये जो कृष्ण दर्शन है, कृष्ण प्राप्ति है, वो तभी संभव है जब हम महान भक्तों का आश्रय ग्रहण करते हैं और कृष्ण से यही कामना करते हैं, साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाहे बस। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कि मुझे तो वैष्णव के संग में रहने का शांत हो, हरि हराय उसमें आता है, क्या है भाई किसको याद है? तांदेल चरण से भी भक्त सनेवास, जन्मे जन्मे है यही अभिलाष, वही ध्रुव प्रसाद। तांदेल चरण किसके चरण? तांदेल, तांदेल कौन है? मां परंपरा के जो आचार्य है वैष्णव। तांदेल चरण से भी मुझे तो इन वैष्णव आचार्यों के भक्तों के चरणों की सेवा में सुन के आदेशों का पालन करना। तांदेल चरण से भी भक्त सनेवास, इस संसार में तो वास कर ही गए हैं, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि हे हरि, हाँ हे यादव, हे कृष्ण, मुझे उनकी सेवा और उनके भक्त सनेवा जन्म जन्म है यही अभिलाष, यही मेरी अभिलाषा है। जन्म चाहे मुझे बार बार उन्होंने नहीं कहा कि बस एक ही जन्म रह सकते हैं मुझे भक्तों के संग में, उसके बाद नहीं मुक्त हो जाना है, ऐसे नहीं। वो कहते जन्म है क्योंकि भक्तों के संग में चाहे हमें संसार में पुनः जन्म लेना पड़े तो भी कोई चिंता नहीं। इसलिए प्रभु भक्तिरण ठाकुर कहते हैं अपने गीत में, कीटल जन्म हो जरी तुआ दासा, मुझे कीड़े का भी जन्म मिल जाए तो भी मैं हंसते हंसते स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इंद्र का मुझे जन्म, ब्रह्मा का जन्म हो गया, इंद्र का जन्म हो गया, हाँ ना ही मोरा अभिलाष, इनके जन्म की मुझे अभिलाषा नहीं, इतना बड़ा बड़ा पोजिशन उसकी अभिलाषा नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां आपके भक्तों का संग नहीं है, वहां आपकी भगवत सेवा आदि नहीं है, वहां भोग है ऐश्वर्य आदि है। हाँ, मुझे कीड़े का जन्म मिल जाए, कहा किसी वैष्णव के घर के नाली में, जब वैष्णव प्रसाद खाएगा तो प्रसाद का वो जो बाहर प्लेट भी धोएगा तो प्रसाद के कुछ कण चले जाएंगे, तो उसको मैं खा पाऊंगा, उसको मैं संतुष्ट रहूंगा। और तो वे भी इतना भी कहते हैं वैष्णव ठाकुर हमें तुवाल कुकुर, हाँ वो ये भी कहते कि मुझे वैष्णव के घर में कुत्ते का भी जन्म मिले तो मुझे उनकी सेवा करने का जो दिव्य लाभ है वो प्राप्त होगा। तो कहने का तात्पर्य है आध्यात्मिक जीवन का ये सार है वैष्णव संघ, वैष्णव की कृपा की कामना, वैष्णव की कृपा की अभिलाषा। इसलिए शास्त्र कहते हैं आपको भक्त बनना है तो भक्त के बारे में सुनो, आपको भगवान बनना है तो किसके बारे में सुनो, भगवान के बारे में। हम किस लिए आए हैं यहाँ, भक्त बनने के लिए भी नहीं, तो हमें किसके बारे में सुनना चाहिए, भक्तों के बारे में सुनना चाहिए। तो हम क्या बनेंगे, भक्त बनेंगे, शास्त्र इस पर जोर देते हैं। क्योंकि वैष्णव चरित्र बड़ा ही पवित्र, क्या ऐसे वैष्णव का जो जीवन है चरित्र आदि है वो बहुत अधिक पुण्यवान है, पवित्र है। उनके गुणों को हम लेते हैं, उनके कार्यकलाप को मेडिटेट करते हैं कि जो सर्वोच्च पवित्रता है वह हमारे हृदय में मन में हम प्राप्त करते हैं। क्योंकि हमारा श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, वो केवल पवित्रता को प्राप्त करने के लिए है। हम इतना साधन भजन आदि कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो मन हृदय आदि भौतिक कलमशों से भरा पड़ा है, तो वो कलमश निकालने के लिए हम लगे हुए हैं, उसके लिए कृष्ण को हम प्राप्त कर रहे हैं, कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से कृष्ण प्राप्ति की यदि किसी व्यक्ति को वांछा है, इच्छा है, तो उस व्यक्ति को वैष्णव का चरित्र को सुनना होगा, उनका गुणगान करना होगा, उनके दिव्य कार्यकलापों से, एक्टिविटीज से इंस्पिरेशन लेना होगा, तब हम एक्टिव हो सकते हैं। तो उसी प्रकार से आज श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाशय का आविर्भाव तिथि है। आविर्भाव का मतलब ही है प्रकट होना, आविर्भाव कहते हैं हम, जन्म नहीं कहते कि आज भक्तिविनोद ठाकुर का बर्थडे है, बर्थडे है वो तो हमारे लिए हमें मानना भी है, पुनः माँ के गर्भ में जन्म लेना, माँ के गर्भ में जन्म लेना है, तो इनका आविर्भाव है। सूर्य का जन्म नहीं कहते, क्या सूर्य बहुत लेट जन्मा है, हाँ सूर्य ने अभी तक जन्म नहीं लिया, सूर्य अभी तक क्या नहीं हुआ, उदित नहीं हुआ, आविर्भूत नहीं हुआ, हाँ तो आविर्भाव का मतलब है कि उसके लिए मरण नहीं है, तिरोभाव तिरोधान अस्त है, लेकिन वो परमानंद नित्य अपनी स्थिति में बना रहता है। तो कृष्ण की तुलना सूर्य से की गई है, कृष्ण के आविर्भाव आदि की। उसी प्रकार से कृष्ण ने कहा कि मेरे जो भक्तों का भी जो कार्यकलाप है, उनका जीवन आदि है, वो भी मेरे समान है, जन्म कर्म च मैं दिव्यम। तो भक्तों के बाहरी कार्यकलापों को देखकर कोई भी व्यक्ति भ्रमित हो सकता है। अभी श्रील भक्तिविनोद ठाकुर को बाहरी रूप से कोई देखेगा तो तुरंत भ्रमित हो सकता है, और उनको कोई सोच सकता है कि ये तो ग्रह में ही है, गृहस्थ जीवन में थे, लेकिन कोई बाहरी रूप से उनको देखेगा तो क्या कहेगा, ग्रह में ही है, तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर जो भगवान के नित्य शुद्ध पारिषद है, पार्षद है, जो भगवान विशेष कार्य करने के लिए अपने धाम से ऐसे विशेष जीव को भेजते हैं। क्योंकि हमारे परंपरा के आचार्यों के बारे में समझना है तो सबसे पहले यही जानना है गौरांग्य संगी गणा नित्य सिद्ध करिमानी, कि गौरांग महाप्रभु के जो गण है ये नित्य सिद्ध भक्ताज हैं, नित्य सिद्ध वैष्णवाज हैं। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर का प्रणाम मंत्र आता है जिसमें कहते हैं नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने, नमो भक्ति विनोदाय, मैं भक्ति विनोद ठाकुर को नमन कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। हाँ, सच्चिदानंद नामिने, एक उपाधि दी गई थी सच्चिदानंद ठाकुर नामिने, गौर शक्ति स्वरूपाय, ये किसके स्वरूप है? गौर शक्ति, गौरांग महाप्रभु की शक्ति कौन है? रूप गोस्वामी वास्तव में। हाँ, रूपानुग वरायते, रूपानुग वराय मीन्स श्रेष्ठ है या फिर उनके अनुयायी है। तो रूप गोस्वामी के जो बिल्कुल प्रभावशाली अनुयायी है, फॉलोवर है, वो भक्ति विनोद ठाकुर है। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर का जो स्थिति है वो कोई नॉर्मल भक्त के समान नहीं है। बल्कि श्रील प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं कि प्रहलाद महाराज को भक्त प्रहलाद नहीं करना चाहिए, प्रहलाद महाराज कहना चाहिए। हम कहते हैं ना प्रहलाद महाराज, क्या गाओ? प्रहलाद महाराज। प्रभुपाद कई जगह कहते भक्त शब्द नए नए भक्त को यूज किया करते हैं। तो लेकिन ऐसे महान महान जो आचार्य गण हुए हैं जिनकी तुलना हम किसी और से नहीं कर सकते, क्योंकि जारचित्ते कृष्ण प्रेम करे मुदाए तार वाक्या क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए, जारचित्ते कृष्ण प्रेम करे उदय। तो भौतिक जगत में हमारे पास क्या योग्यता है? आज प्रभुपाद ने योग्यता की बात कर रहे थे, कृष्ण को देखने की क्या योग्यता है आपके पास? इस भौतिक जगत में किसी वस्तु को देखना है, समझना है, तो उसमें योग्यता की आवश्यकता है, पात्रता चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए। प्रभुपाद ने किसका उदाहरण दिया था अपने प्रवचन में? मैकेनिक, इंजीनियर था। आपकी कार खराब हो जाती है, बोनट को आप खोल के देखते रहते हो इंजन में, लेकिन आपको दिखता नहीं है, लेकिन उसी क्षण मैकेनिक आता है, वो भी देख रहा है और आप भी देख रहे हो, मैकेनिक तुरंत देख के समझ जाता है क्या समस्या है। तो उसी प्रकार से पात्रता, योग्यता की आवश्यकता है। तो भगवान इस भौतिक जगत में छोटी छोटी चीजों के लिए भी क्वालिफिकेशन चाहिए, तो भगवान और उनके भक्तों को देखने के लिए भी व्यक्ति के पास योग्यता की आवश्यकता है। क्योंकि शुद्ध भक्तों को केवल शुद्ध भक्त ही पहचान सकता है। हम तो आपको आपस में कह सकते हैं आप शुद्ध भक्त हो प्रभु जी, क्योंकि मैं भी शुद्ध भक्त हूँ। हाँ, तो ये सब माया का विकृत रूप है। तो शुद्ध भक्त जो महान शुद्ध वैष्णवाज है, वो शुद्ध भक्त को पहचानने का योग्यता केवल एक शुद्ध भक्त के पास है। इसलिए उसके लिए योग्यता क्या है? जार चित्ते कृष्ण प्रेम करय उदय, चित्त में किसका उदय होना चाहिए? कृष्ण के प्रीति का, कृष्ण के प्रेम का। अभी हमारे चित्त में तो हर क्षण माया का उदय होता है, माया के विचारों का उदय होता है, माया को प्राप्त करने के प्लानिंग का विचार, क्या कहते हैं, उदय होता है विचारों का। माया में बने कैसे रहना है, जैसे गद्दियां होती है हाथ के नीचे, ऐसे कैसे बने रहना है, एक हाथ इस गद्दे में, एक हाथ इस गद्दे में, पीछे एक गद्दे पास, ऐसे में बने रहो, चिपका रहो। तो इस प्रकार से हमारा चित्त तो पूरे दिन नाना प्रकार के माया के विचारों में मग्न रहता है। आशेष माया ते मन मगन आए, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, आशेष जिसका शेष ही नहीं है, इतना मेरा मन, मेरा इंद्रिय आदि माया के विचारों में भरे रहते हैं, माया के रंग से रंग जाता है हमारा जो चित्त है, लेकिन यहां कहते हैं जार चित्ते कृष्ण प्रेम करय उदय। लेकिन जिस व्यक्ति के चित्त में कृष्ण प्रेम जागृत हुआ है, उदित हुआ है, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञना बुझाए, विज्ञान बुद्धिमान विद्वान व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के कार्यकलापों को कोई समझ नहीं सकता। तो उसी प्रकार से इनका भी है भक्ति विनोद ठाकुर का। तो भक्ति विनोद ठाकुर का जीवन बहुत विलक्षण है और बहुत शक्तिशाली है, कई सारी घटनाओं से भरा पड़ा है और बहुत स्ट्रगल से भरा पड़ा है। ऐसे नहीं कि भक्त बनना मतलब बड़ा आराम का जीवन जीना, नहीं, भक्त नहीं है। भक्त का मतलब ही है जो कृष्ण के लिए हमेशा स्ट्रगल कर रहा है, कृष्ण के लिए वर्किंग हार्ड। प्रभुपाद देखो, भक्त का मतलब ये नहीं कि बस आराम से उठे और 9 बजे घंटा बज गया, हरि बोल। हम एक मंदिर में गए थे और इस समय गदाईगिरी मंदिर में, गदाईगिरी ना, गदाईगिरी इस्कॉन टेम्पल है, तो वहाँ क्लास जैसे खत्म होता है उसके बाद जोर जोर से 10 मिनट का घंटा बजता है। किसके लिए घंटा बजता है? प्रसाद के लिए। वहाँ आयरन में तो जितने भी भक्त होंगे जहाँ गेस्ट हाउस में होंगे, वहाँ खेती है बहुत आसपास होते हैं, घंटे का आवाज सुन के सब अपने स्थान में आ जाते हैं। तो अच्छा है, कृष्ण के प्रसाद से आ सकता। लेकिन जो भक्त है वो भगवत सेवा के लिए स्ट्रगल करता रहता है, हमेशा प्रयास करता है। एक तो अपने आप को भगवत भक्ति का जो यज्ञ है, आहुति यज्ञ है, वो डालता है। और यज्ञ का समय क्या है? 4:30 से 9 सुबह। ये यज्ञ कुंड है टेम्पल, और क्या है? यज्ञ कुंड है। और हमें अपने अपने स्थानों से अपने आहुति, गुरु हमें क्या करते हैं? आहुति देते हैं स्वाहा। तो भक्त को क्या होना चाहिए? यज्ञ कुंड में होना चाहिए ताकि उसको नया शरीर मिलेगा। जैसे पहले यज्ञ करते थे आश्रम में यज्ञ वगैरह, तो गाय या घोड़ा को डालते थे तो उनको नया शरीर मिल जाता था। तो उसी प्रकार से हम इस शरीर से वैसे ही परेशान हैं। कौन परेशान नहीं है? किसी को ये प्रॉब्लम तो किसी को वो ट्रबल, किसी को मन का प्रॉब्लम, किसी को शरीर का। तो ये यज्ञ कुंड में आहुति, लेकिन हम क्या है, यज्ञ कुंड में जाना ही नहीं चाहते। तो जितना अधिक इस यज्ञ कुंड में, इस यज्ञ में भाग लोगे, उतना ही अधिक हम शुद्ध हो जाएंगे। तो इस प्रकार से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का जीवन या किसी भी आचार्य का जीवन हम देखते हैं जिनका चित्त कृष्ण प्रेम से, कृष्ण भक्ति से द्रवीभूत होता है। कृष्ण नाम लेने मात्र से नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगदहृदया गिरा पुलकय चित्तं मुकुर कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कब होगा? ये तभी होगा जब हम अपने आप को यज्ञ कुंड में डालेंगे। तो यज्ञ कुंड आप समझ गए हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर हमारी परंपरा के एक महत्वपूर्ण आचार्य हैं और जो गौरांग महाप्रभु के शक्ति के स्वरूप हैं। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि वास्तव में इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को किसी ने स्थापित किया है, री एस्टैब्लिश, पुनः पुनर्स्थापना किसने की है, किसी ने नींव डाली है, तो वो भक्ति विनोद ठाकुर है। तो वो हम चर्चा करेंगे। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर प्रकट जब हुए, उससे पहले तो चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ था लगभग 300 साल पहले, भक्ति विनोद ठाकुर के 300 या 350 साल पहले। और वो प्रकट होकर चैतन्य महाप्रभु ने सारा आंदोलन पूरे बंगाल आदि में, उड़ीसा में आदि में फैलाया था। भगवद गीता, श्रीमद भागवतम का उपदेश और हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार। तो लेकिन बाद में चैतन्य महाप्रभु जैसे ही अप्रकट हो गए, उसी समय कई सारे ऐसे जो सहजिया लोग आए जिन्होंने क्या किया कि चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है उसको तोड़ा मरोड़ा, मतलब उसको गलत विधि से लोगों के सामने प्रस्तुत किया। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने गोपियों की जो सर्वोच्चता है, कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम की भावना है, हाँ, उसको प्रकट किया, उसको पूरे जगत के सामने प्रस्तुत किया। लेकिन ऐसे कई सारे लोग थे जिन्होंने क्या किया, ये शिक्षा को गलत रूप से लिया। हाँ, ऐसे लोग सोचते थे कि गोपियों का वेश धारण करेंगे, जिनको सहज या कहा गया है, सहज लेना अध्यात्म को, सहज या है, बिना कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं। तो ऐसे कई सारे लोग गोपियों का वेश धारण करके स्त्रियों के साथ रासलीला आदि करके, ये शास्त्र पढ़ना नहीं चाहते, ऐसे लोग शास्त्रों को फॉलो नहीं करना चाहते। तो ऐसे लोगों ने उत्पात मचा दिया था, और चैतन्य महाप्रभु का नाम, चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन के प्रति कोई जो बुद्धिमान लोग हैं उनको लज्जा आती थी उनकी शिक्षा को स्वीकार करने के लिए। तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन बिल्कुल बंद हो गया था, लोगों को पता भी नहीं था, बंगाल के लोग भी भूल गए थे, ओडिशा के लोग भी, तो भारत के अन्य भागों में तो वैसे जानकारी नहीं थी, विदेशों में तो दुर्लभ ही है। तो लेकिन जब भक्तिविनोद ठाकुर प्रकट हुए, जो कृष्ण के नित्य सिद्ध भक्त हैं, हाँ, जैसे भगवान आते हैं, यदा यदा ही धर्मश ग्लानि, धर्म की ग्लानि होती है, हानि होती है, उसकी पुनर्स्थापना भगवान करते हैं। तो उसी प्रकार से धर्म का स्थापना भगवान और भक्त, ये दो ही लोग कर सकते हैं। इसलिए चैतन्य चरितमृत में वर्णन आता है, धर्म स्थापना हेतु साधुर व्यवहार। तो जो साधु है, भक्त है, वैष्णवगण है, वो अपने आचरण के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का जो युग धर्म था, हरिनाम संकीर्तन, भगवत प्रेम जो बांट रहे थे, ये तो एक प्रकार से अविकसित रह गया था या खत्म हो गया था। लेकिन जब भक्तिविनोद ठाकुर आए तो उन्होंने इसकी पुनर्स्थापना की थी। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, वास्तव में इस इस्कॉन आंदोलन की स्थापना या इसकी नींव भक्तिविनोद ठाकुर ने डाली है। तो ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर का जो आविर्भाव है 2 सितंबर 1938 में पश्चिम बंगाल वीर नगर गुलाग्राम में हुआ था, और इनके पिता ने इनका नाम केदारनाथ दत्त रखा था। केदारनाथ किसका नाम है, शिव जी का नाम है, वो सारे शिव जी के भक्त थे। उनके जो उनके दो भाई थे, एक का नाम था अभय काली और एक का नाम था काली प्रसन्न। हाँ, तो ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर जो केदारनाथ दत्त के नाम से जाने जाते थे, उनके पिता आनंद चंद्र और जगत मोहिनी, उनके माता पिता का नाम था, ये इनका जो वंश है नरोत्तम दास ठाकुर के परंपरा में है। परंपरा का मतलब है नरोत्तम दास ठाकुर के जो पिता थे कृष्ण चंद्र दत्त, उनके बाद 7 families हुई, 7 परिवार चले गए साथ, और उसके बाद ये इनका पिता आए भक्तिविनोद ठाकुर के, आनंद चंद्र दत्त। तो केदारनाथ दत्त या भक्तिविनोद ठाकुर कोई ऐसे वैसे परिवार से नहीं थे, मतलब कोई बहुत अधिक गरीब परिवार से, निर्धन परिवार से, सुशिक्षित परिवार था, बल्कि उनके जो माँ थी, उनका जो परिवार था वो बहुत जमींदार की बेटी थी। इतना धनी परिवार था कि अंग्रेज लोग उनके घर में सिक्योरिटी का काम करते थे, इतना बड़ा धनाढ्य थे। तो केदारनाथ दत्त भक्तिविनोद ठाकुर छोटे से थे, तो उनको पालन पोषण करने के लिए मेड रखे थे, सेविका रखी थी इन्होंने, उनके पिता ने। क्यों? क्योंकि उनके पिता ने कहा कि मेरी जो बेटी है, भक्तिविनोद ठाकुर की जो माँ है, वो बहुत नाजुक, क्या कहते हैं उसको, डेलिकेट है, तो उनकी कोमल है, उनको बड़ा कष्ट होगा बच्चों को पालना पोसना। तो एक मेड रखी थी। भक्तिविनोद ठाकुर अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा जब वो अपने अंतिम समय में थे, तो उनके बेटे थे ललिता प्रसाद, उन्होंने कहा पिताजी आपने तो इतने ग्रंथ लिखे, 100 ग्रंथ लिखे उन्होंने, सबसे अधिक, तो आप क्या करिए, आपके जीवन के बारे में लिखिए जिससे आप जान सके। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने एक छोटा सा एक ग्रंथ लिखा, स्वलिखित जीवनी, अपना स्वयं लिखा हुआ जीवन बचपन से, तो उन्होंने ऐसी चीजों का वर्णन किया है कितना स्ट्रगल उनको करना पड़ा था अपनी युवावस्था में। तो बचपन से तो उनको मेड वो पालन पोषण करते थे और उनका बचपन अपने नाना के यहाँ ही बीता। हम उनकी माँ वगैरह उधर ही रहा करते थे और वहाँ बहुत अधिक दुर्गा उत्सव होता था ये सारे, इसलिए भक्तिनोद ठाकुर को दैत्य कुलेर प्रहलाद कहा जाता है। बंगाल में टर्म है और उनके लिए विशेष रूप से वैष्णव गौड़िया वैष्णव कहते हैं भक्तिनोद ठाकुर कौन है, दैत्य कुलेर प्रहलाद। दैत्य जैसे हिरण्यकश्यप का कुल तो दैत्य का है, डीमंस का है, उनमें प्रहलाद का जन्म हुआ। उसी प्रकार से जो भक्ति विनोद ठाकुर के नाना वगैरह है उनका माँ का जो परिवार है वो दैत्य का परिवार है। वहां भैंस काट के खाए जाते थे, वहां बकरे। भक्ति विनोद ठाकुर ने जब अपना लाया जीवन लिखा उसमें एक चैप्टर इसी का ही लिख दिया है उन्होंने कि कैसे वो फेस्टिवल होता था जिसमें भैंसों को काटा जाता था और बकरे आदि, बहुत सारा लंबा वर्णन है, और पूरा गांव उस फेस्टिवल में होता था इनके नाना के घर में। तो ऐसे स्थान में रहते हुए भक्ति विनोद ठाकुर को आचार्य जी कहते दैत्य कुलेर प्रहलाद, ये प्रहलाद से भी कम नहीं है। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर का जीवन, उनका जो पढ़ाई आदि है उधर ही हुआ था उनके नाना के वहां, और वो इंग्लिश सीखे। एक अंग्रेज आता था और इनके नाना के वहाँ आंगन में इंग्लिश क्लास करता था। तो भक्ति विनोद ठाकुर बचपन से इंग्लिश में बहुत एक्सपर्ट थे और बहुत जल्दी सीखते थे वो इंग्लिश। तो आगे चलकर उन्होंने अपनी पढ़ाई नवदीप के पास कृष्णा नगर, वहाँ जो राजा थे उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल उस समय शुरू किया था, तो वहाँ भक्ति विनोद ठाकुर पढ़ने के लिए अपने भाई के साथ हॉस्टल में रहा करते थे, उनको मेड उनका देखभाल करते थे। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर 11 साल में उनके पिता का देहांत हुआ और 12 साल में उनकी शादी हुई थी, जो 12 साल के थे छोटे से, इतनी छोटी उम्र में उनकी शादी हुई थी। और बचपन से ही उनका अनुराग कृष्ण कथा के प्रति बहुत अधिक था, विशेष रूप से महाभारत आदि को सुनना, रामायण को सुनना, श्रीमद् भागवतम को सुनना भक्ति विनोद ठाकुर का बहुत ये था, क्या कहते हैं, था। तो उनको कहा जाता था कि आपको क्या क्या चीजें अच्छी लगती थी, कौन से आपके बेस्ट कैरेक्टर है। जैसे हमारे जीवन में हम सोचते हैं बेस्ट कैरेक्टर है, ये मेरे लिए रोल मॉडल है। तो वो कहते थे मुझे रामायण में हनुमान का जो कैरेक्टर है हनुमान, वो मेरे लिए रोल मॉडल थे, और मैं हमेशा हनुमान के बारे में सुनने के लिए उत्साहित होता था। तो किसी ने पूछा आपको महाभारत के कौन है। इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर जो अपने फिर यंग एज में उनको बहुत कष्ट उठाना पड़ा, और जहाँ उस जिस गांव में वो रहा करते थे वहाँ सारा गांव पूरा नष्ट हो गया था प्लेग आदि से। तो ये इनके जो नाना जी थे इतने बड़े जमींदार थे, कुछ ही सालों में बेघर हो गए, खाने के लिए उनके पास नहीं रहा कुछ, वो भी बेगी करने लगे, सब पूरे विलेज के लोग शरीर त्यागे और रोड में डेड बॉडीज थी पूरे। तो ये अपनी माँ की चिंता करते थे, ये कलकत्ता में रहा करते थे, यंग थे। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि मैं गया अपनी माँ को लेके आने के लिए उस स्थान में, तो उस स्थान में गया, तो उस स्थान में जब पहुंचा तो वहां इतनी भयावह स्थिति थी। तो मैं जा रहा था तो एक मुस्लिम तांत्रिक ने मुझे पकड़ा। भक्ति विनोद ठाकुर अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि उन्होंने कहा कि हे केदारनाथ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस गांव को छोड़ दो, और कहा कि आप आगे चलकर महान भक्त बनने वाले हो, बहुत बड़े व्यक्ति बनने वाले हो तुम। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि मुझे विश्वास नहीं था उस मुस्लिम तांत्रिक के इस बात पर। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर उस स्थान को छोड़कर अपनी माँ आदि को लेकर कलकत्ता के आसपास रहा करते थे, और कलकत्ता में छोटा कुछ वो कार्य करते थे, साथ साथ अपना पढ़ाई करते थे, लेकिन कृष्ण भक्ति में हमेशा रत रहा करते थे। तो आगे चलकर भक्ति विनोद ठाकुर ओडिशा में उन्होंने खुद पहला एक इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किया, छोटी ग्राम जिसे कहा जाता है, और वहाँ उनके एक नाना जी रहा करते थे जिनका नाम था कृष्ण वल्लभ दल। नाना जी ने पिता के पिता दादा महाशय कहते हैं उनको, तो वो बहुत बड़े योगी थे और अंतिम समय में अपना शरीर त्यागने वाले थे। उन्होंने इनको कहा कि केदारनाथ तुम मुझे देखने के लिए आओ। तो ये केदारनाथ दल था, भक्ति विनोद ठाकुर उनको जब देखने के लिए गए तो डेथ बेड पर थे उनके जो दादा थे, और उन्होंने कहा कि उन्होंने आशीर्वाद दिया भक्ति विनोद ठाकुर को कि मेरा ये आशीर्वाद है कि तुम महान वैष्णव बनोगे आगे चलकर। और भक्ति विनोद ठाकुर के सामने ही उनके दादा ने, जैसे आजकल हम भागवत क्लास में योगी का वर्णन सुन रहे हैं कि योगी अपने आत्मा को छह चक्रों से ऊपर ले जाता है और ब्रह्म रंध्र से निकाल देता है, तो भक्ति विनोद ठाकुर जब मिलने गए उनके दादा ने उनके सामने आपने जो आत्मा है हाँ षड चक्र से ऊपर लाकर ब्रह्म रंध्र से त्याग दी। भक्ति विनोद ठाकुर आश्चर्यचकित रह गए अपने दादा को देखकर कि इतना महान योगी थे मेरे दादा। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर को ये सब महान महान जो वैष्णवाज है हम वो जानते थे, या भक्त जानते थे कि ये सर्व सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये महान भक्त बनेगा। तो वो जब स्कूल में पढ़ाने के लिए भी जाते थे भक्ति विनोद ठाकुर, तो उनको एक पालकी लेने के लिए आया करता था और वो 12 लोग उस पालकी को ढोते थे, और ये टीचर के रूप में भक्ति विनोद ठाकुर जाते थे स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो ये उनका पहला कार्य था। और भक्ति विनोद ठाकुर शुरुआत से ही हरी बोल, तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर शुरुआत से ही बड़े ऑनेस्ट थे। एक बार जब ओडिशा में भक्ति विनोद ठाकुर थे तो उनको किसी एक राजा ने लैंड दिया कुछ आध्यात्मिक कार्य करवाने के लिए। तो जब वो लैंड उनको डोनेट किया उस राजा ने, तो लैंड की जब खुदाई हो रही थी, कंस्ट्रक्शन शुरू करना था उनको, तो उनको एक सोने घड़ा मिला जिसमें गोल्ड कॉइंस थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने यह नहीं सोचा कि ये मेरे लिए है। उन्होंने उस घड़े को उठाया, उस राजा के पास गए, उन्होंने कहा कि ये तो आपने मुझे लैंड दिया है, लेकिन लैंड में जो गोल्ड मिला है ये आपने मुझे नहीं दिया, ये किसका है? आपका है। तो देखा कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो अनासक्त हैं इन विषयों से। तो उस व्यक्ति ने कहा, उस राजा ने, कि हे केदारनाथ ये जो चीजें हैं ये किसके पास रखो? तुम्हारे पास ही रखो, इसको सेवा में यूज करो। तो भक्ति विनोद ठाकुर एक बार अपना बचपन का याद दिलाते हैं। वो कहते हैं कि जब मैं बहुत छोटा था तो घर के पास ही एक गार्डन हुआ करता था जिसमें विशेष प्रकार के फ्रूट्स होते थे, पता नहीं बंगला में गमरुल फ्रूट्स लिखा है। तो वो फ्रूट्स को खाने के लिए मैं बचपन से बहुत उत्साहित रहता था, लेकिन सारे लोग कहते थे कि उस गार्डन में भूत रहते हैं। तो वो कहते कि भूत है, सब लोग डरते थे, कोई नहीं जाता था, लेकिन मुझे बहुत इच्छा थी जाने की। तो मैंने अपने ग्रैंड माँ से पूछा कि भूत का मतलब क्या होता है। उन्होंने कहा कि उनके पास शरीर नहीं होता, वो अपने भोगों के लिए दूसरों पर अटैक करते हैं, दूसरे के शरीर का इस्तेमाल करते हैं, तो आप मत जाना। इन्होंने कहा मुझे जाना है उस स्थान में, वो कहते वहां भूत होते हैं। तो इन्होंने कहा उपाय क्या है? तो उनकी माँ ने कहा कि राम का नाम चांट करो। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि जैसे उस भूतों के एरिया में मैं जाता था फल खाने के लिए, केवल चांट करता था हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा, नाम बिना किछु नाही कार चौदह भुवन मांझे, किस हरे नाम के बिना जो असली धन इस 14 भुवन में नहीं है। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर ने जब देखा कि चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन बिल्कुल ठप हो गया है, बंद हो गया है और उसका गलत प्रचार हो रहा है, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने लगभग 13 अपसंप्रदायों को ढूंढ निकाला, 13 जो अपसंप्रदाय हैं, और ये इसी गौड़िया शिक्षा को फॉलो करने वाले हैं लेकिन गलत ढंग से। तो उन्होंने इन सबको नामकरण भी किया, उनके नाम बड़े टेढ़े मेढ़े हैं फिर भी मैं पढ़ता हूँ। आउल बाउल करता भाजा नेड़ा दरवेश सानी सहजिया सखी बेकी स्मार्त जात गोसाई आती बाड़ी चूड़ाधारी गौरांग नागरी। तो इनकी शिक्षाओं का वर्णन भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत महाराज ने एक एक संप्रदाय को समझाया है कि ये लोग किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को विकृत रूप इन्होंने दिया है और किस प्रकार से लोग इसी कारण से ये चैतन्य की शिक्षा छी ऐसा करते थे उस समय। हाँ, क्योंकि क्या है, अश्लीलता का बढ़ावा था, गलत ढंग से महाप्रभु की शिक्षाओं को इन लोगों ने प्रेजेंट किया था, जिस कारण से समाज में कोई भी महाप्रभु के आंदोलन को स्वीकार नहीं करता था, आकृष्ट नहीं होता था। तो जब इन्होंने देखा कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को यथावत प्रस्तुत कर सकता है, जो मिरर का काम करेगा, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने सुना कि चैतन्य चरितामृत है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को यथावत प्रस्तुत किया गया है, टॉप मोस्ट ग्रंथ है। तो वो ढूंढने लगे, बल्कि उनको 8 साल लगे चैतन्य चरितामृत को ढूंढने के लिए, फिर भी नहीं मिला। अभी तो हमारे लिए कितना ईजी है, 8 मिनट भी नहीं लगते, फोन करो बुक स्टोर में, तुरंत हमें प्राप्त होता है। और वो मिला भी तो उसमें कई सारी चीजें नहीं थी, कई श्लोकात नहीं थे, कई पन्ने नहीं थे। इन्होंने उस समय अपना वो बुक को वृंदावन लेके आए और इधर जिनका कॉपी था, राधा कुंड में कई वैष्णव रहा करते थे, उनके ओरिजिनल कॉपी को देखकर अपने जो कॉपी था उनका, उसको उन्होंने ठीक किया और उसका इस्तेमाल करने लगे। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर जो चैतन्य महाप्रभु के बहुत स्ट्रांग अनुयायी थे और वो जानते थे कि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य, चैतन्य महाप्रभु साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है। हम ये नहीं स्वीकार करते थे, ओडिशा में उस समय हम फेमस स्टोरी सुनते हैं, ओडिशा में जो खुर्दा है, भुवनेश्वर टू पुरी के बीच में खुर्दा स्टेशन आता है, वहाँ कमनल नाम का एक टाउन था, वहां के जंगल में एक योगी रहा करता था, विश किशन। आपने प्रभुपाद सीरियल देखा होगा तो उसमें उसका वर्णन आया है। तो ऐसे जो विश किशन थे, वो योगी था, उनके पास सिद्धियां थी, फायर में घुस जाता था वो, अपने मुंह से फायर निकालता था, तो कई सारे चीजें थी उसके पास सिद्धियां। उसके 2 फॉलोअर थे, एक को वो ब्रह्मा कहता था और दूसरा को शिवजी और स्वयं विष्णु। तो इस प्रकार से वहां के कई राजाओं को प्रचार करके एक टेंपल बना रहे थे वो लोग, त्रिगुणावतार टेंपल। कौन सा टेंपल था? त्रिगुणावतार, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, वास्तव में देखा जाए। हाँ, लेकिन ये अपने आप को विष्णु महेश और ब्रह्मा कहा करते थे। और इन्होंने कहा कि मैं एक समय आऊंगा, एक समय में क्या करूंगा, ये जो ब्रिटिश है उनको भारत से भगा लूंगा। ब्रिटिशों की आंखों में बहुत आ रहा था ये विश किशन, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी किसको कैसे उसको अप्रोच किया जाए। और वो शाम के समय में आसपास के जो कई गांव थे वहां के सारे स्त्रियों को बुला लेते थे, स्त्री अपने भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी मन्नतों के लिए उनके पास जाते थे और उनके साथ रास क्रीड़ा करने में मग्न रहता था। बेचारे पुरुष अपने ऑफिस से काम से आते थे, खेत से देखते थे कि शाम को स्त्रियां घर में नहीं है, कुकिंग नहीं है, तो कहाँ चले गए, विष किशन के वहां। तो इस प्रकार से पूरा जो वातावरण है वो दूषित हो गया, तो हर कोई उनको भगवान मान रहा था। और ये ब्रिटिशर्स ने सोचा कि ये एक ही व्यक्ति ये काम कर सकता है, और लोग भक्ति विनोद ठाकुर। तो भक्ति विनोद ठाकुर को अप्रोच किया, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा मैं जाऊंगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर अपने साथ श्रीमद् भागवतम को ले गए, क्योंकि भागवत साक्षात कृष्ण है। हाँ, भक्त कभी अकेले नहीं चलते, हर समय उनके संग में कृष्ण होते हैं। तो वो भागवतम को अपने हाथ में ले गए। विष किशन को पता था कि ये जो भक्ति विनोद मेरा जो राज है वो खोलने के लिए आया है। तो उन्होंने कहा, जब ये मिले तो उन्होंने कहा चलो, और भक्ति विनोद ठाकुर के साथ 36 मुस्लिम सोल्जर्स थे, 72 पुलिस थे, कई लेडीज गार्ड्स थे, इतना सारे सबको ले गए थे वो इनको पकड़ने के लिए, ये इन्होंने निश्चय किया था। हाँ, तो भक्ति विनोद ठाकुर जब गए
तो उनसे बात करने लगा कि तुम क्यों ये सब ड्रामा कर रहे हो, क्यों नाटक कर रहे हो मुझे पकड़ने का, हाँ मैं तो भगवान हूँ। तो उन्होंने भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा भगवान है तो जगन्नाथपुरी में चलना चाहिए आपको। उन्होंने कहा वो तो लकड़ का भगवान है, जगन्नाथ क्या है लकड़ी का है, थोड़ी भगवान है, भगवान तो मैं हूँ, हाँ सचल हूँ, चलने वाला हूँ, बोलने वाला हूँ, हाँ वो तो एक जगह बैठा रहता है लकड़ी का और उसको आप सेवा पूजा कर रहे हो। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको पकड़ा और वो ले आए 18 दिन उनको रखा जेल में। और उस समय उस योगी के पास इतनी सिद्धियां थी कि भक्ति विनोद ठाकुर के पूरे फैमिली के ऊपर उन्होंने अपनी सिद्धियों के द्वारा कष्ट डाल दिया था। उनकी छोटी सी बेटी थी कदम्बिनी 7 साल की, इतनी अधिक बीमार हो गई कि देह त्यागने वाले थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कोई आवश्यकता नहीं है, उनकी पत्नी जो भगवती देवी थी वो कहा करती थी कि अभी छोड़ दो, इतना सारा परिवार के ऊपर कष्ट आ रहा है। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा नहीं। और इवन भक्ति विनोद ठाकुर इतने अधिक बीमार हो गए थे बुखार आदि से, उनको चलना भी कठिन हो रहा था, उनको कोर्ट में इसके अगेंस्ट निकाल रिजल्ट प्रेजेंट करने को जाना था, फिर भी उनको टफ हो रहा था भक्ति विनोद ठाकुर को। भक्ति विनोद ठाकुर फिर भी गए और उन्होंने इनको सजा सुनाई 18 दिन के लिए पुलिस कस्टडी या जेल में। तो वो जो विश्व किशन जो अपने आप को भगवान समझ रहे थे तो उनको जेल में डाला। और उस समय एक ये थे ब्रिटिश डॉक्टर थे, डॉक्टर वॉल्टर, उन्होंने कहा पढ़ा था कि योगियों की शक्ति बालों में होती है। तो जब इनको पकड़ के ले जा रहे थे, कैंची लेके आ गए थे डॉक्टर वॉल्टर, तो इन्होंने सारे लंबे लंबे बाल काट दिए तो तुरंत इनका बॉडी वीक हो गया उस योगी का। और उन्होंने 18 दिन में ही जेल के अंदर शरीर त्याग दिया। तो इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर को इतना कॉन्फिडेंस था कृष्णस्थ भगवान स्वयं, ऐसे जो सो कॉल्ड भगवान हैं जिनको जो प्रजा है जो अज्ञानी प्रजा उनको स्वीकार करती है भगवान के रूप में, तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथपुरी में उन्होंने अपना वास्तव्य किया। उस समय वो मैजिस्ट्रेट थे और वो जगन्नाथपुरी धाम का उन्होंने पूरा लाभ उठाया। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि मैंने जगन्नाथपुरी में विशेष रूप से जीव गोस्वामी और जो आचार्य के ग्रंथ हैं उनका गहन अध्ययन करना शुरू किया वैष्णवों के संग से। और वो इतना ही नहीं, भक्ति विनोद ठाकुर का दीक्षा भी नहीं हुआ था लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जो उनका घर अभी जहाँ चैतन्य गौड़िया मठ है जगन्नाथपुरी में, आपने देखा होगा भक्ति सिद्धांत महाराज का बर्थ प्लेस, उससे आगे जाते तो जगन्नाथ वल्लभ गार्डन आता है। तो वो जगन्नाथ वल्लभ गार्डन बहुत महत्वपूर्ण लीला स्थली है जगन्नाथ की और चैतन्य महाप्रभु की। तो वहाँ भक्ति विनोद ठाकुर ने भागवत संसद नाम का एक, जैसे आजकल हम आश्रय क्लास या फिर वीकली प्रोग्राम ये सब शुरू करते हैं ना, तो उसी प्रकार से इन्होंने भागवत संसद एक प्रोग्राम शुरू किया था डेली, जहाँ कई डिवोटीज आते थे और भक्ति विनोद ठाकुर श्रीमद भागवतम पर चर्चा किया करते थे। तो एक जो वैष्णव था जिनका नाम था रघुनाथ दास बाबा जी, पूरी के एक बड़े स्कॉलर थे, वो अपने आप को बहुत बड़ा भक्त समझते थे, उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, ये जो ये भक्ति विनोद इनका दीक्षा भी नहीं हुआ, अभी कंठी भी नहीं पहनते, तिलक भी नहीं अभी लगाते, भागवत कथा कर रहे हैं, भागवत पर चर्चा कर रहे हैं, लोगों को उपदेश दे रहे हैं। इस प्रकार से इतना जो बाबा जी जो पूरे पूरे में फेमस था, ये जो दोष दृष्टि दोष बुद्धि भक्ति विनोद ठाकुर के प्रति उन्होंने प्रकट की। हाँ जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, जाल चिंते कृष्ण प्रेम करय उदय तार क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए, कि जिनके चित्त में कृष्ण के लिए प्रेम उत्पन्न हो जाता है जागृत हो जाता है उनके कार्यकलापों को इस जगत का सो कॉल्ड जो विद्वान व्यक्ति या बुद्धिमान व्यक्ति भी समझ नहीं सकता। तो भक्ति विनोद ठाकुर के प्रति ऐसी घृणा और द्वेष की भावना जब उस रघुनाथ दास बाबा जी ने प्रकट की तो तुरंत उनको उसका रिजल्ट भुगतना पड़ा, बहुत अधिक बीमार भी। और जगन्नाथ जी ने कहा कि तुमने मेरे महान भक्त जो पुरी में निवास कर रहे भक्ति विनोद उनके प्रति अपराध किया है, जिसके कारण तुम इन नाना प्रकार के कष्टों से बीत रहे हो। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ टेम्पल के हेड थे, पूरा जगन्नाथ टेम्पल उनके अंडर था। और उस समय इतना बुरी स्थिति थी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ टेम्पल में कि कई सारे लोगों ने एक इवन इजिली कुत्ते अंदर जाते थे मंदिर के अंदर, और एक कुत्ते का मंदिर भी बना दिया था, कुत्ते का मूर्ति बना के जहाँ चैतन्य महाप्रभु के चरण है उससे आगे एक स्थान आता है वहां उन्होंने एक टेम्पल बना दिया था कुत्ते का। भक्ति विनोद ठाकुर गए तो सबसे पहले यही किया, प्रॉपरली सिक्योरिटी सिस्टम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया जगन्नाथ टेम्पल को, प्रॉपर भोगा लादी नहीं लगते थे वो सारी चीजें उन्होंने एक स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश किया। और जो कुत्ते का जो मूर्ति मंदिर बनाया था उसको भी तोड़ के बाहर फेंक दिया, इतने प्रभावशाली थे भक्ति विनोद ठाकुर। इवन भक्ति विनोद ठाकुर जैसे आए तो बाकी बहुत लोगों को बहुत ईर्ष्या होने लगी उनके कार्यकलापों से, क्योंकि जो राजा भी था जैसे अभी भी राजा है पूरी का हर समय राजा है, हाँ तो उस समय जो राजा था वो जगन्नाथ जी का जो डोनेशन लक्ष्मी है वो सारा ले लेता था और अपने ही उसके लिए यूज करता था। तो भक्ति विनोद ठाकुर के समय उन्होंने 80,000 रुपये ले लिए थे, 80,000 कितना होगा उस समय एक आना या इसके भी बहुत मूल्यवान होता था, तो 80,000 उस समय बहुत अधिक है। तो उस राजा को भी भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि आपको अधिकार नहीं है, ये जगन्नाथ जी का लक्ष्मी है उनकी सेवा में प्रॉपर यूज होना चाहिए। अगर भाई ये बाधा है मेरे इंद्रिय तृप्ति में, ये कौन है ये भक्ति विनोद अभी अभी आया है, हाँ इसका अंग्रेजों के द्वारा इस सुपरिटेंडेंट बनाकर। तो जब भक्ति विनोद ठाकुर से उनको ईर्ष्या होने लगी तो उस राजा ने अपने घर में एक यज्ञ शुरू किया, मारण कर्मणि नाम का जो यज्ञ होता है, तांत्रिकों को बुलाया लगभग 30 दिन के लिए, 50 पंडित रोज आते थे राजा के महल में और 30 दिन कंटिन्यू ये यज्ञ करते थे, किस लिए भक्ति विनोद ठाकुर को मारने के लिए। लेकिन जो आखिरी दिन था 30वां दिन जिस समय पंडितों ने आहुति दी स्वाहा, उसी समय भक्ति विनोद ठाकुर को कुछ हुआ नहीं, राजा का पुत्र का मृत्यु हो गए। इस प्रकार से राजा भी आश्चर्यचकित हुआ, उसने अपना वो जो भी धन आदि वापस किया और उसके आगे जगन्नाथ जी की जो सेवा है वो प्रॉपरली होने लगी। ऐसे जो भक्ति विनोद ठाकुर जिनका नाम ही भक्ति को प्रदर्शित करता है या भगवत भक्ति देने वाला है या जो भक्ति का वितरण करते हैं, भक्ति विनोद, भक्ति सिद्धांत और भक्ति वेदांत। तो भक्तजन कहते हैं कि आपको भक्ति विनोद को समझना है तो पहले भक्ति वेदांत को समझना पड़ेगा, भक्ति सिद्धांत से पहले भक्ति वेदांत को और भक्ति विनोद को समझने से पहले भक्ति सिद्धांत को। विनोद का मतलब है पास्ट टाइम्स, लीला आदि, तो उससे पहले आपको वेदों का सार प्रभुपाद वेदांत है और उससे पहले फिलॉसफी सिद्धांत, सिद्धांत का सागर, तभी आप लीला आदि समझ सकते हो। तो जब लीला को समझने के लिए यदि व्यक्ति सिद्धांत को नहीं समझता तो ऐसा व्यक्ति सहजिया बन जाता है, उन लीलाओं को समझ नहीं पाता, उनकी दिव्यता को। तो ऐसे जो भक्ति विनोद ठाकुर थे इन्होंने देखा कि जगन्नाथ टेम्पल के अंदर एक मुक्ति मंडप है, आप जाएंगे नरसिम्हा टेम्पल है मुक्ति मंडप, सारे ब्राह्मण बैठे रहते हैं वहाँ, वो आपको आशीर्वाद देते हैं और उस समय के जो ब्राह्मणास थे वो गाइड करते थे। तो इन्होंने देखा मुक्ति मंडप है, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने एक दूसरा मंडप शुरू कर दिया, कहा लक्ष्मी का जो टेम्पल है मंदिर के अंदर जगन्नाथ टेम्पल में आपने देखा होगा, तो उसके सामने और महाप्रभु के चरणों का जो मंदिर है उसके बीच में उन्होंने भक्ति मंडप शुरू किया, भक्ति प्रांगण, जिसमें वो क्या करते थे रोज श्रीमद् भागवतम का उपदेश देते थे, भगवत भक्ति से युक्त जो ग्रंथ है उनकी चर्चा करते थे और हरिनाम करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भक्ति विनोद ठाकुर ने देखा कि अभी भी चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन जोर नहीं पकड़ रहा है। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि मुझ में वो शक्ति नहीं है, हे जगन्नाथ जी आप क्या करो, मुझे एक रे ऑफ विष्णु, विष्णु की किरण भेजो पुत्र के रूप में, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए। जैसे भक्तिनाथ ठाकुर ये सब कार्य में अपने ऑफिशियल वर्क में बहुत व्यस्त रहते थे, तो जगन्नाथ जी एक दिन सपने में आए और उन्होंने कहा मैंने आपको ऑफिशियल कार्य करने के लिए नहीं रखा है जगन्नाथपुरी में, इसलिए तुम्हारा यहाँ ड्यूटी नहीं लगाया, यहाँ बिजी नहीं रखा। हाँ, तुम्हें क्या करना है, यहाँ मेरा ये जो आंदोलन है उसको बढ़ाने के लिए तुमको यहाँ रखा है जगन्नाथपुरी में। तो एक दिन जगन्नाथ जी को प्रार्थना करते कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए कि जो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को प्रचार कर सके, फैला सके। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रकट होते हैं 6 फरवरी 1874 में भक्तिनाथ ठाकुर का प्राकट्य होता है और हम देखते हैं किस प्रकार से आगे चलकर भक्ति सिद्धांत महाराज ने जो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है वो फैलाया। तो ऐसे भक्तिनाथ ठाकुर जगन्नाथपुरी का उनका समय बहुत अच्छे दिन थे। वो बारंबार लिखते हैं कि अनेक अनेक वैष्णवों से मिलता था और उन्होंने कई सारे ग्रंथ उधर ही लिखे, भागवत अर्क मरीचि माला, ये सारे सॉन्ग बुक्स हैं, जैव धर्म आदि। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर ने दीक्षा ली थी विपिन बिहारी गोस्वामी से, जो जानवा माता के नित्यानंद प्रभु की जो पत्नी है जानवा माता, उनकी परंपरा में एक आचार्य हुए हैं विपिन बिहारी गोस्वामी, तो उनसे उन्होंने दीक्षा ली थी। बल्कि ऐसे जो नित्य सिद्ध परिकर हैं, भगवान के भक्त हैं, उनको किसी से दीक्षा लेना आदि मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी हमारे हमें शिक्षा प्रदान करने के लिए ये महान आचार्य किसी का आश्रय ग्रहण करते। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु स्वप्न में आकर कहते कि आप दीक्षा ले लो वृंदावन जाकर लोकनाथ गोस्वामी से, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने भी इनसे दीक्षा ली थी विपिन बिहारी गोस्वामी से। और एक दिन भक्ति विनोद ठाकुर अपना छोटा सा बच्चा विमला प्रसाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का नाम विमला प्रसाद था, क्योंकि विमला जो भी जगन्नाथ को भोग ऑफर होता है उसके बाद विमला देवी को ऑफर होता है, फिर सारे लोगों में बांटा जाता है। तो जब इनका प्राकट्य हुआ तो इन्होंने कहा सोचा कि ये विमला देवी का प्रसाद ही मेरा जो पुत्र है, तो इनका नाम विमला प्रसाद रखा था। तो एक दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को लेकर जो छोटे से थे भक्ति विनोद ठाकुर अपने गुरु जी से मिलने के लिए गए, अपने जो आध्यात्मिक गुरु थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर कृष्ण लीला में कमल मंजरी है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज नयन मंजरी है। तो ये श्रीमती राधिका के वास्तव में देखा जाए रूप गोस्वामी के बहुत नजदीक के हैं, सेवकगण है। तो भक्ति विनोद ठाकुर गए और अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया, तो उनके गुरुदेव ने अपने जो चरण है वो भक्ति विनोद ठाकुर के सर के ऊपर रखे और भक्ति विनोद ठाकुर के काम से रोम से बाहर गए। तो ये जो छोटा सा बालक था विमला प्रसाद, वो विपिन बिहारी गोस्वामी को कहने लगे आप नहीं जानते हैं कि आपने किसके सर पे चरण रखे हैं, आपको वो अधिकार नहीं है वास्तव में, क्योंकि ये जो मेरे पिता है ये कोई ऐसे वैसे भक्त नहीं है, नित्य सिद्ध चैतन्य महाप्रभु के भक्त है। विपिन बिहारी गोस्वामी जो उनके गुरु थे, ये भक्ति सिद्धांत वैसे ही बड़े, इसलिए तो लायन गुरु कहा जाता है, वो हर समय दहाड़ते रहते हैं शेर की गर्जना की तरह। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कि ये मेरे पिता राधा कृष्ण का जो मिशन है उसको पूर्ति करने के लिए आए हैं और तुमने ये दिखा दिया उनके सर के ऊपर चरण रखे कि तुम कनिष्ठ अधिकारी हो। इस प्रकार से बड़ा गहरा ये हुआ उनको लगा विपिन बिहारी गोस्वामी को। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर जो बड़े ही विनम्र थे, वो इससे ये भी दिखाना चाहते थे कि किस प्रकार से हम गुरु के प्रति हमें आदर और सम्मान की भावना होनी चाहिए। तो उन्होंने 1866 में वो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से मिले, भक्ति विनोद ठाकुर, जिनको उन्होंने अपने शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार किया था और कलकत्ता में उन्होंने अपना घर बनाया जिसका नाम उन्होंने भक्ति भवन दिया। जब उसकी खुदाई कर रहे थे तो उनको कुर्म शिला मिली, जिस शिला को उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को प्रदान किया। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर को ये जो भक्ति विनोद जो उपाधि है, ये पहले तो उनका नाम केदारनाथ के नाम से पुकारते थे, चाहे वो जगन्नाथपुरी में थे या जहां भी थे, केदारनाथ दत्त, केदारनाथ बाबू। लेकिन जब सारे गौड़िया वैष्णवों ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को इतना अच्छी तरह से प्रस्तुत किया है, कितने सारे ग्रंथों के द्वारा, और भक्ति जब ये सब चीजें देखा और देखा कि इतना प्रचार भी हो रहा, प्रचार भी कर रहे हैं, जो नामाठ है हाँ ये भक्ति विनोद ठाकुर ने शुरू किया, बल्कि वो इतने बिजी रहते थे अपने कार्यों में, लेकिन रोज शाम को रोज बाहर जाते थे वो नामाठ प्रीचिंग के लिए, और उनके पास इतनी सेना थी, 1800 माताएं थी जो इतने अच्छे भक्त थे, और कई कई उड़ीसा के बंगाल के गांव गांव में उन्होंने नामाठ प्रचार शुरू किया था, छोटे छोटे सेंटर बनाए थे। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर का ये कार्य देखकर उनके जो गुरु विपिन बिहारी गोस्वामी और उस समय के बड़े बड़े जो आचार्यगण थे ब्रज के या फिर नवदीप या उड़ीसा आदि के, उन्होंने ये उनको उपाधि दी भक्ति विनोद, सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर, ये उपाधि उन्होंने प्रदान किए थे। तो इनको लग रहा था कि भक्ति विनोद ठाकुर को कि क्या मैं इधर पढ़ा, मुझे तो ब्रज में जाके रहना चाहिए अपने अंतिम समय में। 1887 में वो सोचे कि मुझे ब्रज में जाना है, अपना ऑफिस वगैरह त्याग दिया, सेवानिवृत्त हो गए, उन्होंने सोचा ब्रज में वास करूंगा। तो एक तारकेश्वर नाम का रेलवे स्टेशन आता है, अब यदि हावड़ा से नवदीप रेलवे से जाते हो तो तारकेश्वर छोटा सा स्टेशन आता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर वहाँ थे, वहाँ ये विचार कर रहे थे, तो उस रात को चैतन्य महाप्रभु स्वप्न में आए, उन्होंने कहा तुम मेरी ब्रज में सेवा करना चाहते हो तो वही ब्रज यहाँ नवदीप के रूप में है, तुम क्या करो नवदीप में जाओ और मेरी सेवा नवदीप में करो। तो भक्ति विनोद ठाकुर का जो ब्रजवास करने का जो विचार था वो उन्होंने त्यागा कि नहीं, चैतन्य महाप्रभु की सेवा मुझे नवदीप मायापुर में करनी होगी। और वो विमला प्रसाद को अपने हाथ में पकड़ कर ले गए पहली बार नवदीप, और उनको नवदीप बहुत अच्छा लगता था। वो कहा करते थे कि हे कृष्ण मुझे सारे जंजाल से फ्री करो, मैं नवदीप में निवास करूंगा, सूरधुनि तटे जो गंगा है उसके तट पर, और भ्रमण किया करूंगा गौरांग का नाम का उच्चारण करते हुए। तो हम सुनते हैं कि किस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर जब नवदीप में एक रानी धर्मशाला थी उसके छत पर गए रात को, तो उन्होंने देखा दूर ताल के बड़े बड़े वृक्ष नदी के उस पार दिखाई दे रहे थे, और बहुत तेजों में प्रकाश उनको दिख रहा था, और वो समझ गए कि ये कोई विशेष स्थान है। और फिर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज आदि को वो ले गए, और उन्होंने उस स्थान को ढूंढा जो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अप्रकट होने से पहले उन्होंने कहा था कि ये जो मेरा लीला भूमि है मायापुर, ये 100 साल के लिए गंगा के अंदर चला जाएगा और फिर से रीओपन हो जाएगा, फिर से ओपन होगा। तो जो महाप्रभु का जन्म स्थान है उस स्थान में हमेशा बहुत अधिक तुलसियां वगैरह उगा करती थी, और वो सारा मुस्लिम का लैंड था, नजदीकी जो लोग थे वो कहते थे कि ये एरिया मियापुर कहते हैं। तो इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर का ये सबसे बड़ा देन है हमें, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का ये जो जन्म स्थान है वो हमें प्रदान किया था भक्ति विनोद ठाकुर ने। और भक्ति विनोद ठाकुर ने फिर वहाँ गौर विष्णु प्रिया नाम के ड्यूटीज को उन्होंने इंस्टॉल किया, और वो खुद ही बहुत बड़ा मंदिर बना सकते थे, इतना धन उनके पास था, लेकिन उन्होंने सोचा कि चैतन्य महाप्रभु की सेवा का जो ये मौका है ये हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए, मैं अकेला ही नहीं। तो इन्होंने बंगाल, पूरे बंगाल के गांवों में, कलकत्ता शहर में पर्सनली हर लोगों के पास जाते थे और कहते थे कि चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए उनका एक अद्भुत मंदिर का निर्माण हो रहा है मायापुर में, उसके लिए आप क्या करो दान दे दो। कितना? 1 रुपया, उससे ज्यादा लेते नहीं थे, बल्कि भक्ति विनोद ठाकुर के पास इतना धन था, बहुत अधिक धन था, लेकिन उन्होंने ये चाहा। तो यही है गुरु का मतलब है कि वो ऐसी चीजें ढूंढता है कि जिसके द्वारा वो शिष्यों को कृष्ण की सेवा में लगा सके। जैसे श्रील प्रभुपाल ने लाइव मेंबरशिप, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, कितने सारे मीन्स ढूंढे जिसके द्वारा हमारे अंदर जो बहुत अधिक रजोगुण और तमोगुण है उसको हम एक्टिव सेवा में एंगेज कर सकते हैं। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर बहुत ही अधिक विनम्रता की मूर्ति थे और उन्होंने उनको सप्तम गोस्वामी भी कहा जाता है। उस समय एक बहुत फेमस पर्सनालिटी थे शिशिर कुमार घोष, जो अमृत बाजार पत्रिका निकालते थे और महान भक्त भी थे। उन्होंने निमाई चरित नाम का एक ग्रंथ लिखा था और उन्होंने जब भक्ति विनोद ठाकुर को मिले तो उन्होंने कहा, मैंने तो छह गोस्वामियों को कभी देखा नहीं, छह गोस्वामियों का मैंने चरित्र पढ़ा है, लेकिन जब आपको देखता हूँ, आपके कार्यों को देखता हूँ, तो मैं ये समझ जाता हूँ, समझ सकता हूँ कि आप सातवें गोस्वामी हो। सप्तम गोस्वामी की उपाधि उनको दे थे और 1908 में अपने अंतिम समय में भक्ति विनोद ठाकुर ने जगन्नाथपुरी में भक्ति कुटी नाम का एक स्थान बनाया था, जिसमें केवल कृष्ण भजन किया करते थे भक्ति विनोद ठाकुर। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर का जो जीवन है बहुत महत्वपूर्ण है और इतना प्रशंसनीय है, दोनों प्रकार से बैलेंस्ड है, आध्यात्म रूप से भी और अपना नौकरी भी, वो मैजिस्ट्रेट थे तो अंग्रेजों के साथ भी इतना अच्छा संबंध था, इतने उन वो प्रशंसा करते थे कि उनके लिए उन्होंने विशेष ट्रेन बनाया था उनके घर तक। लेकिन अभी मैं मायापुर गया था बीच में तो देखा कि वो निकाल दिया है वो लाइन, अभी बड़ा लाइन डाल रहे हैं, जो ओरिजिनल छोटा लाइन था उसको अभी इंडियन गवर्नमेंट ने हटा दिया रिसेंटली। तो भक्ति विनोद ठाकुर को अपने घर से ऑफिस जाने के लिए विशेष ट्रेन की सुविधा थी। हाँ, तो इतने प्रशंसनीय थे भक्ति विनोद ठाकुर। तो भक्ति विनोद ठाकुर बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, उनको लगभग 8 या 10 भाषाएं आती थी, बंगाली, संस्कृत, इंग्लिश, लैटिन, उर्दू, पार्शियन, उड़िया, कई सारी भाषाएं आती थी। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत अधिक गीतों की रचना की है। उनके गीत वास्तव में कृष्ण के लिए उनके हृदय में जो तीव्र प्रेम है वो गीतों के रूप में प्रकट हुआ है। और प्रभुपाद कहा करते थे कि किसी व्यक्ति को सरलता से कृष्ण प्रति अनुकूल करनी है तो उस व्यक्ति को नरोत्तम दास ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर के जो गीत हैं उसमें डूब जाना चाहिए। यदि इन दोनों आचार्यों के गीतों में कोई व्यक्ति डूबेगा तो उसका हृदय हर समय कृष्ण के लिए लालायित हो उठेगा। तो इनके मेन जो कार्य है, 3 कार्यों का वर्णन करते हैं भक्ति विनोद ठाकुर के, जो प्रशंसनीय है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो उन्होंने 100 ग्रंथ लिखे हैं कृष्ण भक्ति के ऊपर और दूसरा उनका महत्वपूर्ण योगदान है वो है योगपीठ, जो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। और तीसरा क्या है, एक ऐसा पुत्र उन्होंने उत्पन्न किया जिन्होंने पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रसार किया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण आचार्य हैं, तो अधिक से अधिक उनको हमें प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, उनके जो गीत हैं उनको गाना चाहिए, समझना चाहिए, तो उनकी जो कृपा है वह हम अनुकूल कर सकते हैं। उन्होंने अपने जो पुत्र थे उनको भी 3 आज्ञाएं दी थी। एक आज्ञा थी कि वर्णाश्रम, जो दैवी वर्णाश्रम सिस्टम है उसको तुम स्थापित करो, और दूसरा है कि मायापुर में प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करो ताकि जो बृहद मृदंगा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हो। और कहा करते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को, कभी माइजर मत बनो, कंजूस मत बनो, प्रचार करो जाकर। 3 आज्ञा उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को प्रदान किए थे और उन्होंने 3 चीजें भी बोली थी भविष्य के लिए। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा था कि एक पर्सनैलिटी अपीयर होने वाला है, एक व्यक्ति का प्राकट्य होने वाला है महान वैष्णव का, जो सारे विश्व में ट्रैवल करेगा और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का प्रचार करेगा। और दूसरी चीज उन्होंने बोली थी कि सुन, मतलब जल्द ही ये जो हरिनाम संकीर्तन है, जो चांटिंग है, ये पूरे विश्व में फैलेगा और उसमें अमेरिका, लंदन, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, यहाँ के लोग अपने गले में करताल मृदंग डाल के चांट करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उन्होंने कहा कि कब वो दिन आएगा जब ये श्वेत वर्ण के लोग, व्हाइट स्किन वाले लोग, विदेशी लोग, ये मायापुर आएंगे और जो कृष्ण वर्ण वाले, काले वर्ण वाले जो बंगाली लोग हैं, वो आपस में आलिंगन करेंगे और एक साथ नाचते हुए गाएंगे जय सच्चिदानंद गौर हरि। तो वास्तव में हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद आए और हम श्रील प्रभुपाद ने ये कार्य किया। उन्होंने पहली चीज बोली थी एक ऐसा पर्सनालिटी प्रकट होगा वो श्रील प्रभुपाद है। दूसरा बोला कि इनिम, उन्होंने पांच देशों के नाम लिए थे, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और रशिया। तो इन स्थानों में श्रील प्रभुपाद ने स्वयं गए हैं, इन सारे स्थानों में, अंत में रशिया में भी गए अकेले। और तीसरी चीज थी कि ये सारे व्हाइट स्किन वाले भक्त आएंगे लोग और बंगाली भक्तों के संग में नाचेंगे जय सच्चिदानंद कहेंगे। तो हम देखते हैं जब मायापुर का परिक्रमा होता है नवद्वीप का, तो सातवें दिन सारे अलग अलग, अभी तो चार पार्टीज हैं वैष्णव की, रशियन पार्टी है, हिंदी पार्टी, बंगाली है, अभी उड़िया भी होने वाली है, तो इतने सारे पार्टीज हैं। तो ये चार पांच दिशाओं से अलग अलग पार्टी आती है, चैतन्य महाप्रभु का जो बर्थ प्लेस है उसमें जाके सारी पार्टीज मिलती हैं, एक दूसरे का आलिंगन करते हैं और फिर जोर से चांट करते हैं जय सच्चिदानंद गौर हरि, बोलिए
जय सच्चिदानंद गौर हरि।
इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर का महत्वपूर्ण योगदान है। और भक्ति विनोद ठाकुर से हम सीख सकते हैं कि चाहे जितनी मर्जी कठिन स्थिति क्यों ना हो, इस कठिन स्थिति में भी उन्होंने कृष्ण भक्ति हमें प्रदान की है, कृष्ण भक्ति का प्रचार किया है। आइडियल गृहस्था आश्रम के कोई उदाहरण है तो भक्ति विनोद ठाकुर है। उनका जो जीवन है समझना चाहिए। मैंने एक व्यक्ति बहुत परेशान होकर आया था दिल्ली में 7-8 साल पहले मेरे पास, नए नए भक्ति में जुड़े थे, रोहिणी में उनका इतना कोचिंग क्लासेस है, 50 तो टीचर उनके वहाँ काम करते हैं, ये ऑनर है, ये भी अच्छे टीचर है। तो ये कह गए थे कि बहुत कठिन हो रहा है, भजन नहीं हो रहा है, 16 माला ठीक से नहीं होती, उच्चार नहीं, बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे अचानक फाउंटेन के पास बैठा था, मैंने कहा बैठे थे, मैंने कहा एक ही उदाहरण मुझे याद आता है, भक्ति विनोद ठाकुर है। तो मैंने कहा उनके जीवन की एक ही चीज़ आप फॉलो करना शुरू करो, क्या है कि भक्ति विनोद ठाकुर अपना जो दिनचर्या थी शेड्यूल्ड। मैंने कहा उनसे, मैंने उनकी प्रॉब्लम सुनी, मैंने कहा कि एक ही कमी है कि आपने प्रॉपरली आपका जो दिनचर्या है वो शेड्यूल्ड नहीं है। मैंने कहा भक्ति विनोद ठाकुर का वो दिनचर्या पढ़ो, समाधि बुक में एक पेज में उनका दिनचर्या का वर्णन किया है, और इसी प्रकार से आप अपनी दिनचर्या को सोचो और लागू करो। तो वो डिवोटी गया और एक हफ्ते के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मुझे इतना अच्छा लग रहा है मुझे, और फिर 2 बसों को भर के ले आया मंदिर में, अपने सारे टीचर वगैरह सबको दर्शन कराने, राधा पार्षदी का अभी वहाँ के वो प्रोमिनेंट टीचर है। तो इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर एक आदर्श गृहस्थ है थे, और उनके जो पुत्र है भक्ति सिद्धार्थ, और दोस्त में हमेशा वो होती थी लड़ाई होती थी, ट्रांसजेंडर लड़ाई, फिलोसॉफिकल लड़ाई। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते थे कलियुगा में भक्ति करने के लिए गृहस्थ आश्रम सबसे बेस्ट आश्रम है। कौन कहते थे? भक्ति विनोद ठाकुर। और भक्ति सिद्धार्थ महाराज क्या कहते थे? चलिए आश्रम ही सबसे बेस्ट है कलियुगा में। तो ये हम सब नहीं समझ सकते, ये तो महान आचार्य है, इन चीज को समझ सकते हैं। कभी कभी भक्ति सिद्धांत महाराज उनको बहुत डांटते थे, भक्ति विनोद ठाकुर को बहुत सारे शब्द उनके बायोग्राफी में आता है, लेकिन वो ये नहीं, ऐसे भौतिक पिता पुत्र का ऐसे नहीं, क्या कहते हैं, हाँ वो तो ट्रांसजेंडर फिलोसॉफिकल चर्चा करते थे। तो ऐसे भक्त विनोद ठाकुर हमारे लिए बहुत प्रिय और प्रशंसनीय आचार्य है। भक्त विनोद ठाकुर का जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके गुणों को सुनते रहना चाहिए। जैसे मैंने कहा भक्त बनना है तो भक्त के बारे में सुनो। श्रीमद् भागवतम किसके बारे में है, सारे भक्तों का लाइफ ही है श्रीमद् भागवतम में। तो इस प्रकार से तभी हम भगवत भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और वो क्वालिफिकेशन हम अर्जित कर सकते हैं जो सुबह श्रील प्रभुपाद ने अपने लेक्चर में कहा, लालसा तत्र लवल्यम मूल्य में कलम जन्म कोटि सुकृतिर न लभ्यते। कि करोड़ों करोड़ों पुण्य कार्यों की सुकृति से करोड़ों करोड़ों जन्म तक आप पुण्य कार्य करते रहोगे तो भी कृष्ण प्राप्त करने की जो सुकृति है, लालसा है भगवत प्राप्ति की, वो अपने अंदर नहीं ला सकते। उसके लिए एक ही उपाय है, साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाय संसार जिने त्याय को नमस्कुना। साधु संग में बने रहो, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, तांदेरा चरण सेवी भक्त सनेवास जन्म जन्म में हर यही अभिलाष, ये अभिलाष हमें रखनी चाहिए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की।